तो बात क्या है, ये आपके लिए खुशी की आयत, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। वलिकुल्लिन दरजातु मिम्मा अमिलू, हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है, और तुम्हारा रब लोगों के आमाल से बेखबर नहीं। तुम्हारा रब बेन्यास है और मेहरबानी इसका शेवा है। दोबारा इस सूरत में आयत आ गई, यानी सूरत में ये मजमून आ गया। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह इसने तुम्हें कुछ और इंसानों की नस्ल से उठाया है। तुमसे जिस चीज का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है, और वो क्या है? क़यामत। ये हर एक के दर्जों की बात क्यों हुई, इसको जरा नोट कीजिएगा। वली कुल्लिन दरजात, सबके दर्जे। हदीस में आता है कि जन्नत के 100 मुख्तलिफ दर्जे हैं। ये किस दर्जे पे? हर एक की एफर्ट्स पे। देखिए, दुनिया में आप जहाज में सफर करते हैं, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, कोई बहुत ही खास होगा तो हो सकता है उसको कैप्टन के साथ ही बिठा दें, दर्जे हैं ना। होटलिंग में देख लीजिए, 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार 7 और मेरा ले 8 9 स्टार तक होटल बन चुके हैं। फर्क क्या दोनों का? जितना देते जाओ उतनी सर्विस लेते जाओ, यही दर्जा है ना। अब आप जन्नत के बारे में सोचिए, 100 दर्जे हैं। पहले तो अल्लाह का करोड़ शुक्र कीजिए कि उसके 100 दर्जे हैं। हम जैसे लोग पहले दर्जे में भी पहुंच गए जोड़ तोड़ करके नेकियों का, तो वो कहते हैं कि जान छुटी सो लाख हो पाया। आप इमेजिन कीजिए जन्नत का बस एक ही दर्जा होता और वो बिजनेस क्लास होता, जन्नतुल फिरदौस, और मुझे और आपको उसके लिए एफर्ट करनी है, तो मारे जाते ना। आप ऐसे सोचिए ना कि जैसे हम नीचे खड़े हैं और ऊपर जाना है और बीच में 100 स्टेप्स हैं। जो बंदा पहले स्टेप तक पहुंच भी गया वो भी पहुंच ही जाएगा ऊपर, लेकिन जो 100वें पे पहुंचेगा वो तो फिर बहुत ऊपर पहुंचेगा ना। तो पहले तो इसमें अल्लाह ताला ने लोगों की रियायत की है अल्हम्दुलिल्लाह, कि चलो नहीं कर सकते ना, कम अज कम फराइज पे तो आ जाओ। ये जो आज आप मुसलमानों का तजाद देखते हैं फिर घबराते हैं, और कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ये जायज है, कोई कहता है ये फर्ज है, कोई कहता है पर्दा जायज है, कोई कहता है चेहरे का जायज है, कोई कहता है ये एक्सट्रीमिज्म है, कोई कहता है सुन्नत है, कोई कहता है दाढ़ी, आप सुनते हैं ना, कोई कहता है ये करो। ये दर्जों में जाएंगे सब। मुझे और आपको क्या गोल बनाना है? क्या बनाते हैं दुनिया में? हमें आला तरीन पे जाना है। आला पे जाएंगे, कोशिश पूरी ना हो सकी बीच में गिरेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा। एक स्टूडेंट जो गोल बनाता है कि मैंने सिर्फ 33 नंबर लेने हैं, तो वो गिरेगा तो कहां गिरेगा? 20-25 पे। और जो कहता है मैंने 100 में से 100 लेने हैं, ना ही 100 में से 100, 90 तो आएंगे ना, 80 तो आएंगे ना। तो अब मैंने और आपने किस दर्जे की जन्नत लेनी है, यहां पर मैं सोच लें, और मैं इसको दुनिया पे रख के सोचती हूँ। अल्लाह के हुक्म से एक स्टैंडर्ड बन जाता है इंसान के जीने का। हम सब यहां रहते हैं ना, हम जहां की सादी भी चीज लेंगे ना, तो वो बात दफा हमारे मुल्कों की बहुत अच्छी चीज से भी अच्छी होती है। अब जब पाकिस्तान जाते हैं आपके बच्चे, पेट क्यों खराब हो गया? डायरिया हो गया, और जी वहां जाके तो बीमार हो गए, क्योंकि वो बेचारे मक्खियों के आदि नहीं है, और वो पानी मिले दूध के आदि नहीं है, और दही बड़े जिस पे 100 मक्खियां बैठ गई उसको खाने के आदि नहीं है। अब वहां जाके ना मेरे सास होते, हम कहते नहीं हम अपने बच्चों का फूड यहां से लेकर जाएंगे। हम नेमतों में पल गए ना। इमेजिन कीजिए कि जब हमें दुनिया में नेमतों की आदत पड़ गई है, तो जन्नत के हल्के दर्जे पे कैसे चलेंगे? आपको पतली लॉन की आदत पड़ जाए, आप मोटी वायल पहन ही नहीं सकते। प्योर सिल्क की आदत पड़ जाए, आप सिंथेटिक कपड़ा पहन ही नहीं सकते। कहते हैं ना अल्लाह हुसन देता है नजाकत आ जाती है, पैसा देता है ये नखरे आ जाते हैं। तो हम अल्लाह से कह सकते हैं कि अल्लाह तूने हमें इन मुल्कों में और इस दुनिया, मुल्क से नहीं, हमारे मुल्कों में माशाल्लाह बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं, हमसे भी ज्यादा वो अमीर होंगे, लेकिन जब अल्लाह तूने दुनिया में नेमतों का आदि किया तो अल्लाह हमें जन्नत में महरूम ना करना। पाकिस्तान से आए हुए को इधर रहना पड़े वो रह लेगा, यहां की पली बड़ी बच्ची को पाकिस्तान के किसी गांव में भेज दे वो नहीं रह सकेगी। तो अल्लाह हमने तो दुनिया में शाही देख ली, अब हम फकीरी नहीं देखेंगे, तो हमें वहां की भी नेमतें आला दर्जे की अता फरमा, और अल्लाह से ये कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए फरमाया कुल या कौमे मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, ए नबी कह दीजिए कि लोगो तुम अपनी जगह अमल करते रहो, मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूं। इसको नोट करें, वहां क्या मिम्मा अमिलू, यहां क्या कहा अमल करो। जन्नत किससे मिलेगी? अमल से। अच्छा, अब जरा आप इस आयत पर नजर जमाइए, मैं इसको 2-3 मुख्तलिफ एंगल से पढ़ती हूँ। वलिकुल्लिन दरजातो मिम्मा अमिलू की जगह बदलिए जरा ख्वाहिश की, दुआएं की, बात बनती है? यानी जन्नत में तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक दर्जा मिलेगा। आपका बच्चा जितना मर्जी कह ले, पेपर में लिख के आएगा तो नंबर मिलेंगे। दुआएं कराते हैं दूसरों से, खुद अमल नहीं करते। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाए फसौफ तआलमून, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जामेकार किसके हक में बेहतर होता है। बहरहाल यह हकीकत है कि जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद इसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया और कहते हैं ये अल्लाह के लिए अपने ज़ोम में और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा इनके ठहराए हुए शरीकों के लिए वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता मगर जो अल्लाह के लिए है वो इनके शरीकों तक पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये। अब देखिए मक्का वालों की एक बड़ी ही अजीब सी आदत थी, अपनी फसलों के तीन हिस्से करते। इमेजिन कीजिए किसी के पास तीन कनाल जगह जिसमें वो अपना बीज लगाता। एक कनाल के लिए सोचते कि इसमें से जो फसल आएगी ना ये हम अल्लाह के नाम पे सदका देंगे। सदका वो भी देते थे अल्लाह के नाम पे। दूसरे हिस्से से कहते थे ये हमारे अपने मनी मैटर और हमारी अपनी जिंदगी के लिए। तीसरा जो प्लॉट था उसके लिए कहते हैं इसकी फसल जो उगेगी उसका सब प्रॉफिट अपने बुतों को दे देंगे। अब कभी क्या होता, पहला प्लॉट जिसमें अल्लाह के नाम का रखा था उसमें फसल ना आती, बाकी दो में आती। तो अब हिस्सा किसका गया, अल्लाह का। कहते देख लो है ही नहीं अल्लाह के नाम पे कुछ देने को, हम क्या दें, चुपके से अल्लाह को कुछ ना देते। किसी साल फसल उसमें ना आती जो के बुतों के नाम पे रखा था, तो ये करना चाहिए था ना। तो कहते ना ना ना, बुत नाराज हो जाएंगे। चलो इस साल हम क्या करते हैं, अल्लाह वाले हिस्से में जो फसल उगी या नफा हुआ हम वो बुतों के नाम पे चढ़ाते हैं उसकी बात है। कितनी बेवकूफी की बात है ना। चलिए जरा मैं और आप इसको माजरत के साथ अपने ऊपर लेते हैं। क्या आज हमारी जिंदगी के भी तीन हिस्से नहीं है? हम भी अल्लाह के काम करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं, लेकिन जरा हाथ तंग हो तो कौन सा खर्च रुकता है, जरा वक्त तंग हो घर में मेहमान आ जाए तो कमी किस में आती है, नमाज छूटती है, कुरान छूटता है, क्लासेस छूटती हैं। क्या आज हम भी कुछ इसी तरह के नहीं हो गए कि अल्लाह को सिर्फ उस वक्त हिस्सा देंगे जब और कोई काम नहीं होगा। और कुछ लोग तो अल्लाह ताला माफ करे कि अपने अमल से बता रहे हैं कि अल्लाह तू हमें दुनिया के सारे कामों से फारिग करके बिठा फिर हम तेरे काम करेंगे, वरना हम तो अभी बच्चे पाल रहे हैं और अभी तो हम अपनी जिंदगी में मगन है। अल्लाह के हाँ मेरी और आपकी कदर किस सूरत में है कि हम अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी को साथ ले लेकर चले, फिर बात बनेगी। और अल्लाह ताला हमें इस हिस्साबंदी से बचाए। क्या मैं अल्लाह को लेफ्ट ओवर दूंगी, लिखिए कि अल्लाह मेरे बचे खुचे का मालिक है, और अगर अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, सिर्फ वो नेमत मुझे दे जो किसी और को नहीं देनी थी, तो मुझे कैसा लगेगा। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए इनके शरीकों ने अपने औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया ताकि इनको हलाकत में मुबतला करें और इन पर इनके दीन को मुश्तबे कर दें। अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना करते, बस इनको छोड़ दो अपनी इफ्तरा परदासियों में लगे रहें। ये एक और उनकी बिदअत थी। अब ये आखिर तक सूरत में हम मक्का वालों की बिदात पढ़ेंगे, यानी दीन के अंदर जो उनकी तरफ से कमियां बेशियां थी। एक रस्म क्या थी कि अपनी देवियों को खुश करने के लिए अपने बच्चों में से किसी बच्चे को भेंट चढ़ाते थे। ये पहली वजह थी कत्ले औलाद की। जो बच्चा अच्छा लगता है या 10 में से एक बेटा है उसको अपने बुत के नाम पे ज़िबह कर देते। अल्लाह ताला कहते हैं कितना जुल्म है एक जिंदा इंसान क्यों एक मुर्दा बुत के लिए कर दे। आप कहते हैं ये तो ना समझिए, तो आपने वो जुमला तो सुना ही होगा कि किसी ने एक जगह पूछवाया था किसी से, पढ़े लिखे जहनों में ऐसी बातें उठती हैं। अच्छा इमेजिन कीजिए एक कमरा है और वहां ग्रीक्स यानी जिनके आप कहते हैं कि आर्ट और कल्चर की बड़ी धूम है, कोई बहुत ही ग्रीक स्टाइल का एक बड़ा नायाब किस्म का स्टैचू रखा हुआ है और उसी कमरे में एक बच्चा भी सो रहा है और उस कमरे में आग लग जाए तो आप किसको बचाएंगे। तो जवाब क्या कहा था जी बताइए, आपने तो बच्चे का लिया ना। उनका जवाब कुछ और था, उन्होंने कहा हम उस ग्रीक स्टैचू को बचाएंगे क्योंकि वो अब नायाब हो चुका है, यूनिक है, बच्चे का क्या वो जलेगा और बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये है हालात कि जब इंसान इस तरह से बुतों को पूजने लग जाए तो फिर बाकी हालात क्या होंगे। कहते हैं ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और वजन उठाना हराम कर दिया गया और कुछ जानवर हैं जिन पर ये अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा, अन करीब अल्लाह इनके झूठ बांधने का इनको बदला देगा। ऐसी बेतुकी सी बातें हैं जिसका यहाँ तस्करा किया गया कि जब सच्चा दीन लोगों की जिंदगी से निकलता है तो फिर दीन के नाम पे भी इसी तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं। आज भी लोग कहते हैं ये 7 सुहागने हैं, ये 10 बीबियों की कहानी है, ये औरतें नहीं खाएं, ये मर्द नहीं खाएं, ये हमला नहीं खाएं, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये बातें कब आम होती हैं, जब लोग तोहम परस्त हो जाते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुतासिर होते हैं। कहते हैं जो कुछ इन जानवरों के पेटों में ये हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों इसके खाने में शरीक हो सकते हैं। नोट करें, बच्चा मुर्दा पैदा हो तो कहते हैं औरतों आओ तुम भी खा लो, और अगर जिंदा हो उसको काट के जिबा कर ले कहते हैं अब सिर्फ मर्द खाएंगे। ये है ना वुमेन डिस्क्रिमिनेशन। इस्लाम ने तो औरतों को कभी नहीं कहा कि औरतें बकरे की सिर्फ दुम खाएंगी और हेड एंड फुट खाएंगी और अच्छा गोश्त सारा मर्द खा जाएंगे, इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। तो ये बातें कब होती हैं? ये सारी औरत और मर्द की जो डिस्क्रिमिनेशन है ये तब आती है जब सच्चा दीन लोगों की नजरों से हट जाता है। ये बातें जो उन्होंने घड़ ली इनका बदला अल्लाह ताला इनको देकर रहेगा, यकीनन वो हकीम है और सब बातों की से खबर है। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिस्क को अल्लाह पर झूठ बांधकर हराम कर लिया। यकीनन वो भटक गए और हरगिज राह रास्त पाने वालों में न थे। तो इसी तरह आज मुसलमानों में भी बाज दफा अपने बच्चों को कब्रों पर छोड़ाने का रिवाज भी है। बाज आपने सुना होगा डोले शाही के चूहे सबस चोगे पे नहाकर अपने बच्चों को किसी कब्र पे छोड़ आते हैं। इसी तरह बाज ऐसी कब्रें मौजूद हैं कि जहां जिन खवातीन के बच्चे नहीं होते तो वो जाके अपने बच्चे चढ़ाती हैं और वो कहती हैं कि मैं इधर ये चढ़ा दूंगी तो चलो कोई नहीं मेरा हो गया नहीं हुआ, कोई जाकर छोड़ आती है 6-7 साल का होगा फिर लेकर आऊंगी। ये तो हम परस्ती है, क्या आप अल्लाह को मजबूर कर सकते हैं? कुछ बच्चे जिनके गूंगे होते हैं वो जुबानें बनी हुई चांदी की वो जाके कब्रों पर डालती हैं कि ये चांदी की जुबान इस बुजुर्ग पे निछावर करूं तो अल्लाह मेरे बच्चे की जुबान खोल दे। तो आज ये हो रहा है तो उस दौर में जबकि किताब थी नहीं क्या हो रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगा ले। फरमाया यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिस्क को अल्लाह पर झूठ बांध के हराम कर लिया। यकीनन वो भटक गए और हर किस वो राह रास्त पाने वालों में न थे। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकिस्तान और नखलस्तान पैदा किए, खेतियां उगाई जिनसे किस्म किस्म की खाने की चीजें हासिल होती हैं और जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मिलते जुलते भी हैं और मजे में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फलें और अल्लाह का हक अदा करो। ये है असल बात, खाओ पियो अल्लाह मना नहीं करता लेकिन उसका हक अदा करो। जब इनकी फसल काटो तो और हद से ना गुजरो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। क्या इसराफ है खाने का कि ज्यादा ना खा लो, इतना ना खा लो कि फिर सो भी ना सको और नमाज चली जाए और तरावी चली जाए। खाओ पियो ढंग के साथ बैठो, अल्लाह ताला इससे रोकता नहीं है तुमको। फिर वही है जिसने मवेशियों में से भी जानवर पैदा किए जिनसे सवारी और बारदबारदारी का काम लिया जाता है और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ इन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी है और शैतान की पैरवी न करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सर अपने से सवाल करते हैं क्या मैं शैतान को अदुव मुबीन समझती हूँ? देखिए कोई किसी को एक चैलेंजिंग मैसेज भेज दे ना कि घर से बाहर निकलो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, हल्की फुल्की सी जरा बात भी सुनने में आ जाए तो इंसान गमजदा हो जाता है। और शैतान के दुश्मन होने को अल्लाह ने बार बार कुरान में पेश किया, फिर भी क्या हम शैतान को अपना दुश्मन समझते हैं? हम तो कहते अपने बच्चों को हम कह देते अरे शैतान ओ शरीर, हालांकि ना बच्चे को शैतान कहें ना शरीर कहें, ये मुबालगे के सीगे हैं, मना है। शरीर सबसे ज्यादा शर फैलाने वाला और शैतान सबसे ज्यादा आग में डालने वाला। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ये सिफात हो? अगर कभी आज तक कहते थे तो आज से तौबा कीजिए कि हम ऐसे नहीं करेंगे। ये 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरी की किस्म से। ए नबी इनसे पूछो कि अल्लाह ने इनके नर हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हो? ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। इसको हाईलाइट करें, ऐसी फरसूदा रस्में और बिदात इनका इलाज क्या है? नब्बेओनी बेलमिन, इल्म से पहले लोग ऐसे काम करते हैं। देखिए हम उनकी चीजें पढ़ रहे हैं ना, आज हमारे कल्चर में भी ऐसा बहुत कुछ है, कभी कुंडे भरते हैं कभी कुछ करते हैं, कोई पूछे कहते हैं दादी अम्मा ऐसा करती थी, और क्या फर्क पड़ता है? पीला जोड़ा दुल्हन को पहनाते हैं क्या बड़ा फर्क पड़ता है? हालांकि याद रखिए कि हर रस्म अपने साथ दूसरे कल्चर को लेकर आती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप कहीं कोई पौधा लगा देखें तो आप कहते हैं ये पौधा मेरे घर चले मुझे अच्छा लगेगा, आप जो ही वहां से वो पौधा निकालेंगे ना उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी भी आ जाएगी और वो मिट्टी आपके घर तक पहुंचेगी। हर रस्म चाहे हमने हिंदुओं से ली, नसारा से ली, यहूद से ली, उनके साथ उसका कल्चर आया। और एक और जुमला लिख लीजिए कि हर रस्म की बुनियाद में अकीदा होता है। मिसाल दूंगी, अब इस पर कोई लंबा चौड़ा सोचिएगा ना, लेकिन सिर्फ आपका शोर बेदार करने को, क्योंकि आज तो हम वो सोच के नहीं करते। लेकिन मसलन आप देखिए कि हमारे कल्चर में भी अब आम हो गया इंडिया में रहते और लोगों को देखते हुए कि शादी से पहले दुल्हन को पीला जोड़ा पहनाते हैं। अब आप किस सोच से पहनाते हैं इसको आप छोड़ें, अपने ऊपर रखें, लेकिन इसकी असल क्या है? वो लोग क्यों पहनाते हैं? वो कहते हैं कि पीला रंग बहार की देवी को खूबसूरत लगता है, शुभ होता है, और बहार की देवी जब किसी को पीले रंग में देखती है तो उसको वो बरकत देती है। ये बच्ची जब पीला जोड़ा पहनेगी तो इसकी बरकत से ये घर बसा रहेगा। अब आप मुझे बताइए कुरान क्या कहता है कि बेघरों को बसाना किसी देवी के हाथ में कि अल्लाह के हाथ में? अब वो पीला जोड़ा आपने पहन लिया, आपको तो नहीं पता लेकिन पीछे से उनका खानदान का एक अकीदा आ गया ना। और इस तरह की बीसियों चीजें अगर इस वक्त इस पे खोलने लग जाओ तो हम आगे नहीं जा सकते। तो किसी भी रस्म को लेने से पहले देखिए कि हो क्या रहा है। फिर एक और चीज भी होती है, बाज दफा जब लोगों को मना करें कहते क्या फर्क पड़ता है ना, अब डोंट बी टू पिकी और डोंट बी टू स्टेंजी लाइक दिस एंड दैट, तो आप देखिए कि बिदत और रस्म दोनों चीजों को साथ समझ ले क्योंकि अब आखिर तक यही मौजू चलने वाला है। बिदत क्या होती है? जो दीनी मामलात में इजाफे होते हैं, सवाब समझकर वो काम करना जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, ठीक है, रिलीजियस मैटर में वो काम कर लेना जो इस्लाम में नहीं थे। रस्म क्या है? दुनियावी मामलात में वो काम कर लेना जो अल्लाह के नबियों और नेक लोगों से साबित नहीं थे। ओवरऑल दोनों को लेके अपने ऊपर एक मिसाल लेते हैं। अल्लाह ने क्या कहा सूरत मायदा के शुरू में आपको और मुझे? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम पर अपना दीन पूरा किया। इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लिविंग। प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ नमाज का तरीका सिखाने के लिए नहीं आए थे, फिर तो एक महीने में चले जाते। अल्लाह के नबी सल्लम हमें सिर्फ रोजा या हज नहीं सिखाने आए थे बल्कि 3 से ज्यादा दफा गालिबन कुरान में ये आए थे, लकत का नलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की सूरत में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है। इस्लाम और मुसलमान सिर्फ जाय नमाज पे खड़े होकर शुरू नहीं होता, पूरी जिंदगी में चलता फिरता मुसलमान अल्लाह का नुमाइंदा होता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की शादियां की, अपनी भी की, आपके सहाबा की भी हुई, ये मेरे और आपके लिए रोल मॉडल था। अब आप और मैं जब इसको बदलते हैं तो क्या होता है, इसको एक मिसाल से समझिएगा। कोई खानदानी औरत ये पसंद करती है कि उसकी बहू उस खानदान में किसी और का बच्चा ले आए, हो बच्चा किसी और का और वो कह दे नहीं ये तुम्हारे बेटे का, हम तो खौल जाएंगे, मुमकिन ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि तौबा अस्तग़फ़ार, इन्होंने मेरे खानदान में किसी और को डाल दिया। या आप देखिए कि आप ब्लेंडर को काम करता ना देखें तो उसमें जाके इस्त्री का तार लगा दें तो ब्लेंडर काम करेगा? नहीं करेगा ना। बस यही काम बिदात और रस्मों के साथ हुआ। आज हमने इस्लाम की रिचुअल्स को तो फिकी बहसों में पर उलझा दिया और तर्ज़े ज़िंदगी को, वही बात है कि वज़ा में हो तुम नसारा और तरीकों में तुम हनूद और तुम वो मुसलमान हो जिसको देखकर शर्माए यहूद। आज हमारे लाइफस्टाइल को देखकर कोई पहचान नहीं सकता कि इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लिविंग। ऐसे लगता है कि इस्लाम मुफलिस और कलाश था, ना इसने जीना सिखाया ना पहनना सिखाया। हम किसी के 3-4 लोगों के कपड़े पहन लें, किसी की कमीज ले लें, किसी का दुपट्टा ले लें तो हमें कितनी शर्म आए। तो जब हम तर्ज जिंदगी दूसरों का लेते हैं तो चलते फिरते हम लोगों को मैसेज देते हैं कि सॉरी वी आर हैंड टू माउथ मुस्लिम्स, और जब कोई मना करे तो कहते हैं क्या हरज है, किसका दिल टूटा। अब आप अगर इन आयतों को बाद में जाके आराम से भी पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो बातें ऐसी बेवकूफी वाली लग रही हैं। ये औरत ना खाए, ये मर्द ना खाए, इस जानवर की पीठ पे ना बैठो, इसको दूध ना पियो, इसका ना करो। तो हम होते तो कहते भाई किसका दिल टूट रहा है इससे, आज कोई काम करे ना ऐसा तो लोग कहते हैं चलो क्या है थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। जिस चीज को हम इशू नहीं समझते अल्लाह ने उसको इतना बड़ा इशू किया कि दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब में रख दिया। तो किस है मुख्तसर बात क्या कि किसी कौम का तर्ज अमल या उसकी जिंदगी गुजारने का तरीका उसके क्रीड और उसके अकीदे के मुताबिक होता है। वो लोग अपने अकीदे को नहीं छोड़ते तो मैं और आप कैसे उनकी बातों को ले सकते हैं। तो जब कभी ऐसी बात हो तो कम अज कम खामोश हो जाए, बहस नहीं करनी चाहिए इन बातों पर, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू मेरे लिए अच्छा कर। लेकिन क्या आज हम सबका हाल नहीं है? हमने आज सही दीन पे अमल करने वाले को क्या कहा? ये वहाबी होगा, अच्छा ये फुलां होगा, ये कैसे दीन है? हमने अपने दीन को इतना पीछे डाल दिया कि वही बात मौलाना हाली का एक शेर आपने सुना होगा कि जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, आज परदेस में गरीबुल गुरबा है। क्या आज आपको इस्लाम गरीबुल गुरबा नहीं दिखता? क्या आज मैं और आप अगर इस इस्लाम को देखें, सच्चा इस्लाम जो अमल करे लोग कहते हैं ये तो बोरिंग है, हालांकि असल इस्लाम वही था कि जिसको हमने लेना है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा कर दें। अगर आज हम सुन्नतों को रस्मों के ऊपर कुर्बान करें, हमारी मर्जी कल क्यामत के दिन अल्लाह का नबी हमसे पूछ लेगा कि मैंने तो तुम्हें एक मुकम्मल दीन दिया था, तुम पता नहीं किन चीजों में लग गए, और आज हम अपने आप को इस चीजों से जब तक दूर नहीं करेंगे हम किताब पे नहीं आएंगे। आप अभी तो बैठे हैं ना बड़े मुतमईन होके, क्योंकि रमजान में शादियां नहीं होती, ईद के बाद शादियों का मौसम। मैं आपको बुरी बात नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे कल से मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं कि जो कल हमने थोड़ी सी जिक्र किया कि अच्छा आप बाद में भी कुछ करते हैं, तो लोगों की डिमांड और मैसेज और दिस एंड दैट कर रहे हैं कि जी हमें बाद में भी पढ़ना है। अब जितने इरादे कर रहे हैं, जिसको कहने जी मुसम्मम इरादे भी है ना, जब तक खुद को उस पर पहले से बांध के दिल में नहीं रखेंगे ना, कितनों के इरादे रमजान के बाद की शादियों की नजर हो जाएंगे। फिर मेहंदियां, फिर उपटन, फिर तैयारियां, फिर पाकिस्तान का चक्कर, फिर इंडिया का चक्कर, फिर इधर उधर, और वो सब जज्बे जो रमजान में उभरते हैं ना, वो बाद में ठंडे होते हैं। फिर कहते हैं वो बस वो शादी की तैयारियों में लग गए थे। ये रस्म और रिवाज है जिन्होंने आज इस किताब से उम्मत को रोका हुआ है। आज मेरी और आपकी जिंदगी भी सिंपल होती ना अगर अल्लाह के नबियों वाली, तो हम भाग रहे होते दीन में, पर हमारे कंधों पे तो इतने काम है। अभी तो हमने मेहंदी की प्लेट टेस्ट जानी है, अभी तो थीम मैरिजेस होनी है, अभी तो हमने क्या कुछ करना है। तो उम्मत वसत को ये सूट नहीं करता, बाकी करें शौक से करें। मेरे और आपके पास अभी काम बहुत सारे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें दीन के असल रुख पे रखने वाला और रहने वाला बना दे। फिर उन्हीं की कुछ मजीद बातों को सामने किया गया, और इसी तरह दो ऊंट की किस्म से है और दो गाय की किस्म से, पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हो, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का तुमको हुक्म दिया था, या इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे ताकि इल्म के बगैर, फिर नोट कीजिए दोबारा इल्म की बात आ गई, ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। आज बेइल्म लोगों ने लोगों को मुतमईन कर दिया, कहते हैं हमें चंदा देते रहो और जो मर्जी करो तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तो अल्लाह ताला में बगैर इल्म के बात करने से महफूज रखे। इन अल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिम कौम को राह रास्त नहीं दिखाता। क्या कहो फिर, वही की पैरवी। बड़ी खूबसूरत आयत है। कुल्ला जिदु फी मा उही इलैया महर्रमा, ए नबी इनसे कहो जो वही मेरे पास आई है, इसमें तो मैं कोई चीज इसमें ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो। यानी ये जिसको तुमने हराम कह दिया कि ये बाबा जी की कब्र पे छोड़ दिया जानवर, तो ये नहीं खाना और वो नहीं खाना, हालांकि मेरे इस्लाम में तो ऐसी कोई चीज हराम नहीं। क्या हराम है इस्लाम में? तीसरा मुकाम है सूरत बकरा, फिर सूरत मायदा, और अब यहाँ सूरत अलानाम में तीसरी बार सेम आयत आ रही है थोड़े से अल्फाज से फर्क से। इल्ला यकून मैतन अव दमन दमम मसफूहन अव लहम खिंजीर, का मेरी शरीयत में ये बातें तो हराम नहीं है जो तुमने की है, हाँ मगर क्या हराम है? ये कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सुअर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर जिबा किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में इनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो, और बगैर इसके कि वो हद जरूरत से तजावुज करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार कर ली उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम किए गए थे। हमारी शरीयत आसान है, यहूद की शरीयत असलन भी कुछ सख्त थी, कुछ इनके मुफ्तियों ने फतवे दे देकर और ऐसे जुमले बोल बोल कर दीन को और सख्त कर दिया था कि जानवर जिनके नाखून है वो इन पर हराम थे। जैसे आप देखिए कि मुर्गी के नाखून होते हैं ना, बतख के होते हैं, इनकी शरीयत में इन्होंने हराम कर ली थी ये चीजें, और गाय और बकरी की चर्बी भी हराम कर ली, सिवाय इसके जो उसकी पीठ या उसकी आंतों से लगी हो या हड्डी से लगी रह जाए। ये हमने इनकी सरकशी की सजा दी थी उनको, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब लोग दीन के मामले में बहुत ही फिकी बहसों में पड़ जाते हैं ना, तो अल्लाह दीन को सख्त कर देता है। यही हालात बनी इसराइल के साथ हुए थे। अब अगर वो तुमको झुठलाएं तो इनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामने रहमत वसी है और मुजरिमों से इसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। ये मुशरिक तुम्हारी इन बातों के जवाब में जरूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसी ही बातें बना बना कर इनसे पहले के लोगों ने भी हक को जुटलाया था, यहां तक कि आखिर हमारे अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। देखिए अपने शिर्क का इल्जाम अल्लाह पर डालते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इबलीस का किस्सा, उसने भी यही किया था, अपनी गुमराही का जिम्मा अल्लाह को दे दिया। अल्लाह ताला हमें इस रवैये से महफूज रखे। यहां तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। इनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो महज गुमान पर चल रहे हो और निरी क्या सराइयां करते हो। फिर कहो तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत रस हुज्जत तो अल्लाह के पास है, बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। क्यों नहीं दी अल्लाह ने सबको हिदायत? सिंपल सा जवाब इसका बताएंगे, क्योंकि सबने मांगी नहीं। देखिए जो मांगता है उसको मिलता है, पानी का ग्लास भी आप उसको ही देते हैं जो मांगता है, और आप किसी को जबरदस्ती दें भी और ना पीना चाहे तो आप देंगे? तो हिदायत का ताल्लुक तलब से है। अगर हिदायत की तलब नहीं तो अल्लाह आपको नहीं देगा, और हिदायत बड़ा गयूर मेहमान है, आपके दरवाजे पे नॉक करती है हिदायत, जैसे आजकल हमारे घरों पे दरवाजों पे ये कुरान नॉक कर रहा है। जब दिल का दरवाजा खोलते हैं, ये हिदायत एक बहुत अच्छे मेहमान की तौर पे हमारे दिल में आके बैठ जाएगी और फिर कभी नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम दिल के दरवाजे नहीं खोलेंगे, एक आध दफा नॉक करेगी फिर चली जाएगी, क्योंकि उसको ऐसे घरों में नहीं जाना जहां के लोग उसको पसंद नहीं करते।